समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के आज के इस अंक में मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। हेलो अनीता।
हेलो जया, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM फॉर ऑल ऑफ यू। वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के लिए 17 नई पहल शुरू की गई।
20 पीपल किल्ड इन दार्जिलिंग हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यू टू इंसेसेंट रेन्स एंड लैंडस्लाइड्स, लाइटनिंग एंड रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स क्लेम 16 लाइव्स इन बिहार।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर की 2 दिन की भारत यात्रा इस महीने की 8 तारीख से।
Hamas, Israel and the United States set to begin talks in Cairo today on the US proposed Gaza ceasefire deal.
भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
And in cricket, the ICC Women's ODI World Cup clash between India and Pakistan is underway in Colombo. And time now for our segment Headline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today, we will talk about Kaushal Dikshant Samaroh. Prime Minister Narendra Modi unveiled various youth-focused initiatives worth ₹62,000 crores during the Kaushal Dikshant Samaroh in New Delhi yesterday, giving a decisive push to education, skilling and entrepreneurship for youngsters across the country. During the samaroh, the Prime Minister launched the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs PM Setu. The Prime Minister said that 2 more major schemes have been launched with the PM Setu scheme worth thousands of crores. He said our ITIs will now be directly and strongly linked with industries. The Prime Minister said PM Setu scheme will benefit over 1,000 ITIs across the country as they will be upgraded and modern machines will be introduced.
इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है। आज हमने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहां आएंगे। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है और बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि आईटीआई न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कौशल और ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कौशल और नवाचार पर जोर देते हुए युवा शक्ति को भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रही है।
भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं।
And here, as most of our listeners would know, that the Kaushal Dikshant Samaroh was the 4th edition of the National Skill Convocation, which was organized in accordance with the Prime Minister's vision, with 46 All India toppers from industrial training institutes, that is ITIs, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship were felicitated. The Prime Minister said just a few years ago, our government started a new tradition of large-scale convocations for ITI students. Today, we are all witnessing another milestone in this tradition. Today's ceremony symbolizes the importance of India's places on skills.
जी अनीता, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब तक हम कड़ी मेहनत के प्रति समर्पित नहीं होंगे और मेहनती लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। यह आयोजन मानसिकता बदलने की एक पहल है। हम श्रमेव जयते श्रमेव पुजायते के मार्ग पर चलते हैं। इसी भावना के साथ आईटीआई के छात्रों को भी आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहिए। यह एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग है।
And PM Modi said that India is a country of knowledge and skills, which he called the country's greatest strength. When skills and knowledge meet the country's requirements, then their strength increases by multiple folds. Today, the 21st century demands that we rapidly promote local talent and resources, keeping the country's requirements in mind, and our thousands of ITIs play a huge role in it, he said. The GST Budget Utsav, which was announced by Prime Minister Narendra Modi and commenced on the 22nd of last month, is benefiting all sections of society. Today, our correspondent brings a report on the GST reforms that will empower different industries of West Bengal.
The new GST reform is a big win for West Bengal's artisans, farmers and small businesses. Now, cloths costing up to 2,500 rupees will be taxed only at 5% from the earlier 12% GST rate. This makes garments more affordable and gives a boost to the local textile industry. For Bengal's traditional crafts and regional products, the change is especially meaningful. Handmade items like Shantiniketan leather goods, Bankura terracotta, Purulia, Chow mask, Nakshi Kantha embroidery and processed mango products from Malda will now only have 5% GST. Darjeeling tea extracts also move to 5%, making them cheaper and more competitive worldwide. Jute eco bags will also benefit, helping both the 2.5 lakh jute mill workers and 40 lakh jute farmers. This reform supports Bengal's culture and gives it people a fairer chances to grow. With revised rates on goods, the next generation GST reforms aims to enhance affordability for consumers and improve margins for artisans. These reforms focuses on bringing higher sales, job preservation and a boost to rural economies during the festive season and beyond. Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो सबसे पहले बता दें कि दशहरा होते ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती है और बिना शॉपिंग के दिवाली हो ही नहीं सकती। आम जनता के लिए दिवाली की खरीदारी इस बार बचोत्सव होने वाली है। जीएसटी की दरों में हुई कटौती से लोगों के खर्चों में बचत होगी और वो अपनी पसंदीदा चीजें अधिक मात्रा में खरीद सकेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
दिवाली पर कपड़े, पटाखे और मिठाइयों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान की बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है। इस खरीदारी पर जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को तो मिल रहा ही है, साथ में विक्रेता भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर के व्यवसायी पंकज अग्रवाल ने इस बारे में और अधिक जानकारी दी।
इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत एलईडी टीवी जो 43 इंच और उसके ऊपर जो एलईडी टीवी है, डिश वॉशर्स जो कैटेगरी है, अभी नई कैटेगरी है, वो भी इसमें आती है। और थर्डली सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी एयर कंडीशनर। तो ये सारे तीनों प्रोडक्ट के ऊपर में जो पहले 28% जीएसटी था वो भी 18% आ गया है और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है और मार्केट ग्रो हो रहा है और गवर्नमेंट को भी इसमें टैक्स भरते मिल रहा है।
आम लोगों के औसत मासिक खर्चे में दवाइयों पर होने वाला खर्चा अधिक है, जीएसटी सुधारों में इसका भी ध्यान रखा गया है। छत्रपति संभाजी नगर के फार्मासिस्ट अभय मिसाल ने इस बारे में आकाशवाणी के साथ जानकारी साझा की।
अभी जो जीएसटी स्लैब चेंज हुए है उसके अंदर एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंशन और मोस्टली सारे इमरजेंसी ड्रग्स में जीएसटी कम हुआ है। फिलहाल जो 18-20, 12% के जो ड्रग्स थे वो सारे 5% में आए हैं। उससे मिनिमम 10-12% कस्टमर और पेशेंट्स के पैसे बचेंगे।
जीएसटी सुधारों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। आम जनता के लिए ये वास्तव में बचतोत्सव सिद्ध हो रहा है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
And now we go over to Mizoram, where pineapple farmers have taken a significant step towards market expansion by eliminating middlemen. This initiative promises to reshape the agricultural supply chain and improve farmers' incomes. The government places a strong emphasis on organic farming to ensure soil preservation and promote sustainable development. The government has consistently taken steps to support farmers financially and create market opportunities for their products. More from our correspondent.
Pineapple cultivation had been attempted in Mizoram in the past, but those early efforts saw little success. Farmers planted only in small quantities and did not prioritize pineapple as a main crop. As a result, there was no large-scale production or bulk sales during that time. However, the situation has changed as farmers in Mizoram have now recognized the potential of the pineapple market. Current harvests are large enough to supply the entire state and even allow for export to other states. In Sialhog village, one of the key pineapple producing areas, farmers have reported that the demand for pineapple is strong both within Mizoram and beyond. With consistent sales and good prices, pineapple farming has become a reliable source of income for many. Pineapple growers from Sialhog village says,
"The fruit is purchased in bulk by buyers who distributed it in Aizol and other cities where it has gained popularity among consumers. There is often high demand even before the harvest is completed, and in some cases, the supply cannot meet the interest of the resellers. The pineapple are carefully cultivated, resulting in juicy and flavorful produce, which has contributed to their appeal. With steady demand and good returns, pineapple farming is now seen as a viable and sustainable livelihood option for farmers. Even if more farmers opted for it, there is a market for it."
Sialhog, Mizoram's large pineapple producing village, has wrapped up its pineapple sales for the year, recording an impressive total revenue of 175,20,000. The earnings include proceeds from direct sales and other pineapple-related activities. Home to more than 250 pineapple farming families, Sialhog contributes approximately 64% of Mizoram's total pineapple output. This year, the village harvested 11,240 quintals of pineapples, solidifying its status in the state's pineapple powerhouse. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani Aizol.
देश भर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत गुजरात के भुज में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही देश में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को शुरू करते हुए 50 साल पूरे होने पर इसकी सफलता पर भी बात की गई। सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की यह रिपोर्ट।
विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव प्रजातियां और आनुवंशिक विविधता से समृद्ध देश के पश्चिमी भाग में स्थित कच्छ जिले के भुज में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी ने राज्य के वन विभाग के साथ मिलकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों समेत 140 से अधिक विशेषज्ञ एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें जलवायु चक्र के एक महत्वपूर्ण घटक वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देने के साथ साथ लुप्तप्राय प्रजातियों, आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक महत्व, प्रवासी पक्षियों के आवास, विभिन्न नीतियों, वन्य जीव पर्यटन आदि पर चर्चा की गई। गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख डॉक्टर ए पी सिंह ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में बताया,
खास करके यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं, उनका कैसे संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निराकरण हो, इस आधार पर ये आयोजन किया गया।
भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कई राज्यों से बड़ा कच्छ जिला सभी 7 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों से युक्त होने के कारण वन्य जीवों के मामले में काफी समृद्ध है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार बताते हैं कि कच्छ में रण, समुद्र, पहाड़ियां और घास के मैदानों के साथ साथ कंटीले जंगल, मैंग्रोव और वेटलैंड्स की मौजूदगी की वजह से जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य से आदर्श स्थिति का निर्माण होता है।
कच्छ में सब काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स हैं एंड एवरी इकोसिस्टम सपोर्ट्स अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। And along with that, Kutch is one of the migratory gateways.
कच्छ की खाड़ी पर स्थित कच्छ का रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खारे और आर्द्र क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र का जैव भूगोल अद्वितीय है, क्योंकि यह एक तरफ से अरब सागर और वहीं दूसरी ओर थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। भारत में एकमात्र इनलैंड मैंग्रोव की मौजूदगी कच्छ के पारिस्थितिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा देती है। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।
तो अनीता अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहाँ की हलचल।
जी बिल्कुल, इंडिया पैरा एथलीट्स हैव एंश्योर्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल हॉल इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स दैट इज कंक्लूडिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। इंडिया हैव बैग्ड 18 मेडल्स सो फार इंक्लूडिंग 6 गोल्ड्स एज एकता भयान बिकेम द 18th मेडलिस्ट यस्टरडे इन द F51 क्लब थ्रू कैटेगरी। Paralympics gold medalist Navdeep will be in action today and India can earn a maximum of 7 medals on the final day of the event at Jawaharlal Nehru Stadium. This is India's best showing ever at the Para Athletics Worlds, besting the 7 medals earned in 2024 edition at Kobe in Japan. And now news from the defense sector. In a historic feat, the Border Roads Organization BRO has once again scripted history by setting a new record as Project Himang constructed the world's highest motorable road at Meghla Pass, located at 19,400 feet above sea level in eastern Ladakh near the line of actual control LSC. With this achievement, the BRO has surpassed its own previous record set at Om Lingla in 2021, which stood at 19,024 feet. Led by Brigadier Vishal Srivastav, the BRO team hoisted the national flag and organization's flag at the site. The newly constructed road, part of the Likaru-Meghla-Phukche alignment, holds immense strategic importance as it forms the third crucial access from Hanle to Phukche village near the border. In addition to its strategic value, the road is expected to boost tourism in Ladakh, offering breathtaking views of the Indus Valley. This milestone stands as a testament to the BRO's engineering excellence in some of the world's most extreme and challenging terrains.
Anita, different sector se ek khabar mere paas bhi hai, jahan Bharatiya Nausena ka Swadeshi stealth frigate INS Sahyadri दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में मलेशिया के केमामन बंदरगाह का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जहाज ने इस महीने की 2 तारीख को दोनों देशों के बीच स्थायी सांस्कृतिक संबंधों और साझा समुद्री परंपराओं का जश्न मनाते हुए बंदरगाह का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत मलेशिया समुद्री सैन्य सहयोग को और मजबूत करना, दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और सर्वोत्तम नौसैनिक प्रथाओं का आदान प्रदान करना था। स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित और 2012 में कमीशन किया गया INS सहयाद्री शिवालिक श्रेणी निर्देशित मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट का तीसरा जहाज है। यह INS सहयाद्री की मलेशिया की तीसरी यात्रा है। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
द डे ऑफ 5th अक्टूबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर बाजी राउत। ही वाज मियरली अ 12 ईयर ओल्ड बॉय व्हेन ही फियरलेसली स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ बंच ऑफ ब्रिटिश सिपॉयज डिनाइंग देम सर्विस। बाजी राउत वॉज बॉर्न इन 1926 at the Neelkantpur village in Dhenkanal, Odisha. Son of Hari Raut, Baji was a boatman and volunteer of the Praja Mandal in the Dhenkanal state. He was responsible for the task of keeping vigil on the movement of the state police and troops at the Neelkantpur Ghat on the Brahmini River.
On the night of October 10th in 1938, a number of policemen and soldiers tried to force him to take them across the river in his boat. The 12-year-old boy refused to do so and told them they were enemies of the people. A soldier struck him on his head with the butt of his gun and his skull was fractured. Despite his serious injuries, he raised an alarm and warned the villagers about the arrival of the soldiers and policemen. He died the same night due to excessive loss of blood. The bravery and patriotism of young Baji Rawat has been immortalized in the poem Boatman by the famous Odia poet Sachi Rautarai.
On the day of 5th October in 1938, in Kerala, a serious and violent confrontation took place between the British Armed Force and freedom fighters at Kadakkal, a village about 48 kilometers north of Trivandrum. The arrest of some state Congress workers provoked the people very much. The situation of the area was already tense due to the exorbitant toll collected by the agents of the government from the market at Kadakkal, though its intensity was not so hard as in the nearby markets of Kallara, Pangore area. The state Congress workers of Kadakkal exhorted the people not to pay the toll. Also, they obstructed the sale of liquor.
On 29 September, the protesters stormed the police station in the area and the small police party sustained injuries. In view of the alarming strength and fury of the mob, the police temporarily withdrew to Kotarkara. The people had already seized the guns and swords kept in the station.
On 5th October, two platoons of military arrived at the area and suppressed the agitation with an iron hand. 13 houses were set on fire by the police and military. People were mercilessly beaten and tortured. Several cases were framed against the leaders and participants of the movement.
साथ ही हम याद कर रहे हैं समाज सुधारक और बहुसर्जक रचनाकार किशोरी लाल घनश्याम दास मशरूवाला की, जिन्होंने तलाक और विधवा पुनर्विवाह जैसी स्थितियों का समर्थन किया. मशरूवाला, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल तिलक और थक्कर बाबा जैसे राष्ट्रीय नेताओं से गहरे रूप से प्रभावित थे. उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गांधी विचार दोहन, यानी कि गांधी के विचारों का सार है जिसमें, और अहिंसा विवेचना.
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी दुर्गावती. बोर्न ऑन दिस डे इन 1524, शी वाज द क्वीन रेजेंट ऑफ गोंडवाना इन 1550 टिल 1564. शी मैरिड द अडॉप्टेड किंग ऑफ राजपूत एंसेस्ट्री दलपत शाह, the son of King Sangram Shah of Gondwana. She served as a regent of Gondwana during the minority of her son Veer Narayan from 1550 until 1564. She is chiefly remembered for defending Gondwana against the Mughal Empire.
और अनिता, दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने भी की है. आईनाए अकबरी के अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी. वीरांगना महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी. उन पर लिखा गया है, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी.
Today is also the birth anniversary of Ramlinga Swamigal, born on this day in 1823, was known as Vallalar also. One of the known Tamil saints who taught giving food for the hungry and also seeing God in all the both living and the non-living things. He strongly emphasized feeding poor is the most important path to enlightenment. He is a renowned thinker of the 19th century who teaches deathlessness. He belongs to a line of Tamil saints who speak about Siddhi, meaning getting merged with the supreme god known as Gyan Siddhars, meaning higher wisdom.
भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक पंडित रामचतुर मल्लिक ने भी आज ही के दिन जन्म लिया था. उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के चमथा गांव में हुआ था. इन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी और देश का नाम रोशन किया था. मल्लिक जी ध्रुपद ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे. एक शास्त्रीय गायक कलाकार के रूप में मल्लिक जी ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए. 1949 में उन्हें आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के विशिष्ट कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था. 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें बिहार संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप प्रदान की थी. 1957 में बम्बई की सुर श्रृंगार संसद द्वारा इन्हें मानपत्र और ताम्र पत्र प्रदान किया गया. 1964 में बिहार के राज्यपाल A.S. आयंगार ने ताम्रपत्र उपाधि से विभूषित किया और उसी वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था. और 1976 में फ्रांस सरकार ने रामचतुर मल्लिक के ध्रुपद धमार रिकॉर्ड को यूनेस्को प्रसारण के लिए भी चुना था.
La la la.
Today is the birth anniversary of Kripaluji Maharaj, born on this day in 1922. He was the Indian spiritual guru. He was the founder of Prem Mandir in Vrindavan and Jagat Guru Kripaluji Parishad, that is JKP, a Hindu non-profit organization with 5 main ashrams, 4 in India and 1 in the US. On Makar Sankranti, 14th of January 1957, he received the title of Jagat Guru, which is world teacher, from Kashi Vidwat Parishad. His book Prem Ras Siddhant contains his teaching called Jagat Guru Kripalu Bhakti Yoga Tattva Darshan. It expounds the philosophy of divine love and the practical path to God realization.
आज ही जयंती है चो रामस्वामी से प्रसिद्ध श्रीनिवास अय्यर रामस्वामी की. वे न सिर्फ भारतीय अभिनेता थे बल्कि एक हास्य कलाकार, संपादक, राजनीतिक व्यंगकार, नाटककार, संवाद लेखक, फिल्म निर्देशक और अधिवक्ता भी थे. बाबूराव पटेल की मदर इंडिया की तर्ज पर चो रामस्वामी ने तमिल में राजनीतिक व्यंग की पहली पत्रिका शुरू की और इसका नाम तुगलक रखा था. 200 के करीब फिल्मों में उन्होंने हालांकि मस्करे की भूमिका ही निभाई, पर कुल 23 नाटकों के जरिए रामस्वामी ने अपनी अलग पहचान बनाई क्योंकि इनमें विदूषक की भूमिका निभाते हुए संवाद उनके लिए हुए थे.
Today is the birthday of Brian Johnson, born on this day in 1947, the English singer and songwriter. He was the third lead singer of the Australian rock band AC/DC, taking over the role in 1980 after the death of Bon Scott. Johnson was one of the founding members of the rock band Geordie, which was formed in Newcastle upon Tyne in 1971 after several hit singles, including the UK top 10 hit All Because of You. The band split in 1978. I'm playing a snippet from the song Back in Black.
तुम सुधी बन बन कर बार बार क्यों आ जाती हो प्यार मुझे, फिर विस्मृत बन तन्मयता का दे जाती हो उपहार मुझे. मैं कर की पीड़ा को विलीन, पीड़ा में स्वयं विलीन हुआ, अब असह बन गया देवी तुम्हारी अनुकंपा का भार मुझे. अनीता, ये पंक्तियां आप अभी तक अंदाजा लगा चुकी होंगी कि किसकी है. जी बिल्कुल, ये पंक्तियां हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की एक कविता की है. आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था. उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया. कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 में त्रिपथगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुई, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं. यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना अलग महत्व है, इसके बीच बीच में इनके फिल्म और आकाशवाणी से भी संबंध रहे हैं.
टुडे इज द बर्थडे ऑफ केट विंसलेट, द इंग्लिश एक्ट्रेस प्राइमरीली नोन फॉर हर रोल्स एज हेडस्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड वुमन इन इंडिपेंडेंट फिल्म्स, पर्टिकुलरली पीरियड ड्रामास. शी हैज रिसीव्ड न्यूमरस एक्लेड्स इंक्लूडिंग एन एकेडमी अवार्ड, 2 Prime Time Emmy Awards, 5 BAFTA and 5 Golden Globe. Time magazine named Winslet as one of the 100 most influential people in the world in 2009 and 21. She was appointed the Commander of the Order of British Empire, that is CBE, in 2012. I'm playing a snippet from the Ravens, from the movie The Revolutionary Road.
Caught every star in the midnight sky, caught every rose, every firefly.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और अनीता को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड जॉइनिंग अस. सी यू अगेन.
नमस्कार.